20 सितंबर 2020 का दिन ये भक्तजनों आपके लिए मंगल में हो, कल्याण में हो। आप सब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर उन्नति करते हैं और भगवान का धन्यवाद करें कि आपको मानव जीवन मिला है और उस पर मानव जीवन मिलकर के सत्संग करने की भी इच्छा पैदा हुई है। ये इच्छा बहुत कम लोगों में होती है, मनुष्य योनियां तो बहुत हैं, लेकिन कोई कोई बेला बेला ही मनुष्य योनि में आकर के भगवान से वो लगता है, भगवान से प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान को मानता है, भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान के लिए जीता है, मतलब उसका हर एक काम भगवान के लिए होता है। उनमें से आपकी भी गणना आ गई है, क्योंकि आपको भी आप सत्संगी है, आपको भगवान से प्रेम है, प्रीति है। मैं कहती हूँ कि ये प्रीति आपकी बढ़ती रहे और ये सत्संग आपका बढ़ता रहे। अगर सत्संग है तो भगवान है, अगर सत्संग नहीं किया तो मनुष्य पशु के समान है। मैंने ये सोशल एनिमल कहा जाता है कि मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन सोशल कैसे है, वो समाज में रहता है, समाज से बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, यह शादियां करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। मैं गीता अध्याय 18 श्लोक 50 सिद्धियों प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पनोतीन बोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को जो कि ज्ञान की प्रतिष्ठा है जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। देखिए यह कितना सुंदर शब्द आया सिद्धि, लेकिन हम सिद्धि किसको समझते हैं? हम लोग सिद्धि के बारे में बोलो ऐसा कहा जाता है वो महात्मा बड़े सिद्ध है, बड़े जाने जान है। क्यों है वो सिद्ध? क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त। उनका मन साफ है, उनकी बुद्धि स्पष्ट है, उनका चित्त अहंकार से रहित है, तो इसलिए वो सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। लेकिन अगर हमने कपड़े पहन लिए सिद्ध पुरुषों के और फिर कह दिया हम तो भक्त सिद्ध है, तो नहीं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उनको ब्रह्म मिलता है। अच्छा, इसकी व्याख्या साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि। ये अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि कैसे होती है ये समझ लो, वो होती है कर्म योग से, सेवा से। कितनी भी भक्ति करो, कितना भी ज्ञान करो, अगर जीवन में सेवा नहीं की तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सेवा में ऐसे अवसर आते हैं, गोल्डन चांसेस आते हैं कि जिसमें हम अपने अंतःकरण की शुद्धि अपने आप स्वतः कर लेती है या हो जाती है। जैसे सेवा करते दफा हम वर्ण और आश्रम का कोई भेद नहीं करते, देश विदेश का भेद नहीं करते, भाव भीतर का भेद नहीं करते, केवल सेवा करनी है, भगवान समझ कर सेवा करनी है। अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो चाहे बाद में ज्ञानी बनो चाहे भक्त बनो। श्लोक कागल बुद्धिया विशुद्धा युक्त धृत्यात्मना नियम्य च शब्दा दीन विश्वास चित्ता त्याग देशो विदस्य च। विविध से भी लघुवासी यत वाक्य मानसा ध्यान लोग करो नित्यम दैराग्यम समापिषता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम हरिहम विमुच्यन्य महाशांतो भूवाया कल्पते। ये तीन श्लोकों का अर्थ इकट्ठा है, 51, 52 और 53। जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, इंद्रियों को अपने सेम में रखकर, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषय का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के पायन हो जाता है। वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ब्रह्म कब मिलते हैं हमें? हमें ब्रह्म की अनुभूति कब होती है? कब साक्षात्कार होता है? इसके लिए कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि कैसा होना चाहिए। सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, विशुद्ध बुद्धि, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य ऐसे कि हाँ, वैराग्य मतलब विषय वासनाओं से वैराग्य, तो अधिकतर एकांत का सेवन करने वाला और भोजन भी ठीक ढंग से करने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, शरीर और वाणी और मन को भी वश में कर ले। शब्द बोलने बोलते कि है ये भी देखे और त्याग करे, वो किसी से राग किसी से द्वेष ना करे और फिर ध्यान भी करता रहे, तो वो मनुष्य अहंकार को छोड़े, बल को छोड़े, दर्प काम क्रोध परिग्रह से रहित होकर और ममता रहित होकर इतनी कंडीशन आई है, तब जाकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है तथा उसमें परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है। जिनके राग द्वेष मिट जाते हैं, जिनका अहंकार खत्म हो जाता है, जिनका काम क्रोध खत्म छूट जाता है, वही लोग ब्रह्म के प्राप्ति के प्राप्त पात्र है। श्लोक ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति समान सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला जो ब्रह्म रूप बन गया ना, उसके बारे में बताते हैं। उसका मन कैसा होता है? प्रसन्न रहता है, वो न किसी के लिए दुख करता है और न किसी की इच्छा करता है। वो संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला होता है। ऐसा साधक मेरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर जो ऐसा साधक बन जाता है उसको क्या मिलती है? भगवान की भक्ति में पराभक्ति मिलती है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति को सर्वोपरि नहीं मानता, भक्ति का खंडन नहीं करता, उसे मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता है। इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा बड़ी भक्ति है। कहते हैं भक्ति के गर्भ मुक्ति दासी के समान है, इसलिए हमें भक्ति की प्राप्ति करने मुक्ति के लिए ही दौड़ना। जो अपनी दृष्टि मान्यता से ब्रह्म बना हुआ है, वो ब्रह्म हुआ नहीं है। जो ये कह देगा ना हाँ हम ब्रह्म अस्मि हम ब्रह्म अस्मि, है ना, यानी कि वो ब्रह्म बन गया। ब्रह्म भूत होने के बाद जीव को जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध हो जाता है। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। पर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में अपने आप को विलीन कर देने में परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है। अपने आप को जब हम परमात्मा में विलीन कर देते हैं, लीन कर देते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति की प्राप्ति है। आत्मीय संबंध क्या हुआ कि भगवान आप मेरी आत्मा है, आप मेरे सब कुछ है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, मतलब सब कुछ आप ही हैं। मेरा तो कोई और है ही नहीं, मैं किसकी ओर जाऊं? हम जब मेरे स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर जो मॉर्निंग असेंबली होती थी उसमें दो चार जो मॉर्निंग असेंबली जिसमें प्रार्थना गाई जाती थी, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, ये मुझे याद आ गया अभी अभी बैठे बैठे। कि तब बचपन में हम सोचते थे, मैं सोचती थी कि क्या कैसे ये लिखा तो है किसी ने, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, किसके दर को छोड़कर, भगवान के द्वार को छोड़कर। तभी से एक भगवान के साथ मैंने एक संबंध जोड़ लिया था, हालांकि कोई कमी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन फिर भी लगता था जब हम सुबह प्रार्थना में जाते थे, हाथ जोड़कर आंखें भी बंद कर देते थे। हमारी जो हेडमिस्ट्रेस थी श्रीमती पिंगला देवी शर्मा, वो एक आदर्श नारी थी और सख्त भी बहुत थी, तो सिर पर दुपट्टा ओढ़ के हमें स्कूल में प्रवेश करना होता था, जैसे कि हमारे पिताजी ने हमें घर में सिखाया था। तो वो लड़कियों पर काफी कंट्रोल करती थी, डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे। तो जब इस ये प्रार्थना गाते थे, मुझे वो जगह भी याद आ गई, वो स्कूल भी याद आ गया, और एडमिनिस्ट्रेटर मुख्याध्यापिका जी के दर्शन भी हो गए हैं सामने। तो किस प्रकार हम ये गाते थे, और मैंने तो उसी क्षण से अपना मन अपनी आत्मा भगवान से जोड़ ली थी। जब जब आगे जाकर वो तो बचपना था, आठवीं तक तो बचपना ही था, उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष हुआ, नाइन्थ टेंथ पढ़ी, है ना, उसमें संघर्ष तो कुछ नहीं होता, लेकिन पढ़ाई का संघर्ष होता है, कॉलेज में यही बात है। लेकिन जब जब भी कभी ऐसे क्षण आते मेरे जीवन में, नहीं मैं तो अपने बता रही हूँ, लेकिन आप लोग समझेंगे जानेंगे कि आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा, मैं ऐसा समझती हूँ कि जब जब वो क्षण आते हैं, कभी पेपर बड़ा टफ आ गया, कभी कोई और घर में काम बहुत है और दूसरे दिन पेपर है। जब मैं टेंथ क्लास का एग्जाम देना था यूनिवर्सिटी का, तो मेरा दूसरे दिन साइंस का पेपर था, घर में बहुत से मेहमान आ गए, और मैं जा करके छुप गई, एक छोटा सा कमरा था, भगवान का मंदिर था उसमें, और जा करके वहाँ अपने साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रखने बैठ गए। तब मेरे माता जी आए, ढूंढते ढूंढते तू कहाँ बैठी है, इतने लोग आए, इतने चल मेरे साथ काम कर। तू सोचा है तो क्या करूँ, मतलब ऐसे क्षण आते हैं तो उस वक्त हम भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, कहते हैं भगवान कल का पेपर आपने ही ठीक करवाना, कल अगर मैं पेपर में फेल हो गई तो क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं हमारा विश्वास है, आज भी या उस वक्त भी था, कि जब जब भी ऐसे समय आते हैं और हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारा वो काम अवश्य बन जाता है। लेकिन हमारी शरणागति 16 आने होनी चाहिए, तो रेफरेंस तो क्या था, प्रसंग तो क्या था, लेकिन ये जुड़ गया इससे, है ना। जुड़ने से मैंने आपको सब बताया कि भगवान के सिवाय हमारा कौन है, किसके द्वार पर हम जाएं, किसको पुकारे, वो है केवल भगवान। जब जब हम उसे पुकारेंगे, वो श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होंगे, शरण में जाएंगे, तो भगवान भी हमारी रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसे हमने कई नाटक देखे, कोई फिल्म भी देखी, जिसमें हमने देखा कि जो अनन्य भक्त होता है उसके ऊपर भगवान की कृपा कैसे होती है। तो वो भी हमारे बचपन में कुछ संस्कार बना देते हैं, और हमें लगता है कि इन भक्तों की भगवान ने रक्षा की तो हमारी भी अवश्य करेंगे, लगता नहीं और प्रत्युत सिद्ध हो जाता है कि हमें भी समय समय पर भगवान स्वयं बचाने के लिए स्वयं आया, उन्होंने अपना हाथ स्वयं बढ़ाया, हमने खुद अपने आप आगे ले आए हैं। हम कौन होते हैं जो अपने आप एक कदम भी बढ़ा सके, नहीं। पतन की ओर जाना आसान है, लेकिन उन्नति की ओर भगवान की कृपा के बिना नहीं जा सकते। जैसे नल खोल दो तो पानी का सह स्वभाव है, जो नीचे की ओर बहेगा, पत्तों को लाने के लिए उसी जल को एक नाली लगाओ, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक ही ऐसे ही हमारा भी मन जो है वो नीचे की ओर बड़ी आसानी से चला जाएगा, विषय वासनाओं में, लोगों की नकल करने में, हंसी मजाक करने में। लेकिन अगर उसको मन को बोले कि चलो आज गीता का अध्याय पढ़ो, ज्ञान योग पढ़ो, भक्ति योग पढ़ो, बताओ क्या होता है ज्ञान योग। तो हमें सोचना हम बोलेगा अभी कहाँ टाइम है, कौन पढ़ेगा, कौन सुनाएगा, क्या रखा है उसमें। इस तरह से हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। ये तो हमने गीता जी से बहुत कुछ लिया, भगवत गीता से हमें बहुत कुछ ही सब कुछ मिलता है। अब मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ। भक्त्या मां विजानाति यावन्यश्चास्मि तद्वता, तत्तो मां तत्वतो यद्वाविष्टे तदन्तरम्। उस परा भक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको, इसको तत्व से जान लेता है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि जो परा भक्ति से, परा भक्ति बताई ना अभी अभी, अभी अभी आपने सुना, परा भक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, ज्ञान से जान लेता है, और फिर जानने के बाद मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने कि हम सबको भगवान में प्रविष्ट होना है। जब तक हम भगवान से बाहर हैं, अलग हैं, तब तक हम अपनी सत्ता अलग बनाए रखते हैं, और सत्ता में अहंकार होता है, मैं होता है, मेरा होता है, वो मैं और मेरा से भगवान बहुत दूर होते हैं। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब भक्ति प्राप्त होती है तब उसमें तत्व से जानना और प्रविष्ट होना, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। ज्ञान मार्ग में भगवान के दर्शन नहीं हो गए, हम प्रविष्ट हो जाएंगे, उनसे मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उन्हें नहीं होती, और वो चाहते भी नहीं। ऐसे ज्ञानी लोग कहते क्या करने भगवान के दर्शन। लेकिन जो भक्त है उसको भगवान के दर्शन भी करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग संतों में भगवत की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती है। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, जैसे हम रामेश्वरम रहते हैं, है ना, बहुत बड़ा द्वार है, गेट है, जब हम भले भारत के किसी भी हिस्से से जाए तो सबकी होड़ होती है कि चलो मुख्य द्वार पर काम मिल जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न लोग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर एक हो जाते हैं। चले तो वो कहीं से कोई चलाओ, देखो आप देखते कितने सनातन धर्म है, एक दीक्षा ही है, वो सनातन धर्म की जड़ बड़ी पड़ती है, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा खड़ी रहती है, वो कभी नहीं सूखती है, ये मान्यता नहीं है, ठीक है, सिद्ध है। तो सनातन धर्म में रूपी वृक्ष में कितनी शाखाएं हैं, फिर उसमें कितने पत्ते हैं, फिर कितने फूल लगते हैं, फिर कितने फल लगते हैं, ऐसे ही हमारे सनातन एक वृक्ष में जैसे लगते, वैसे ही सनातन धर्म में हम देखते हैं कितने संप्रदाय हैं, और फिर उनके भी छोटे छोटे मतभेद हैं। ये सब क्या है, ये विभिन्न मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए, अनेकों मार्ग है, भगवान एक है, लेकिन डिफरेंट आर द वेज टू रीच द गॉड। सर 56 श्लोक, सब कर्मण्यपि सदा पूर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादादवानोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने हमें आश्वासन दिया है, अगर हम गीता पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं और भगवान सुना रहे हैं, हम भगवान के सामने बैठे हाथ जोड़कर अर्जुन की भांति। तो भगवान क्या कहते हैं, सुनो, मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे पर डिपेंड होने वाला सब कर्म करता है और मेरी कृपा से उसको अविनाशी पद भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्त कभी निठल्ला नहीं हो सकता, निठल्ले को हम भक्त कहेंगे। भक्त तो सब कर्म करता है, संसार में रहते हुए सबका भला करते हुए भगवान के दर्शन करता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि ये सब विषयों का त्याग करके स्वयं पूर्वग्रंत ध्यान के प्रायण है, तब वे हमता ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त करता है। इसको बताया ये ज्ञानी को संतो भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने हमें बोला है क्योंकि हमें धरती प्यारी है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वे अपने बल को बुद्धि को योग्यता को किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। ज्ञानी कहते हैं मुझे इतना ज्ञान है, मैंने चार वेद पढ़े, मैंने ये है नो, लेकिन भक्त कहते मुझे तो कुछ पता ही नहीं, बस बल है योग्यता है, मैं तो केवल भगवान का आश्रय लेता हूँ और फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। लोग ऐसा सर्व कर्माणी ये समस्या मतरा बुद्धि योग उपाशिता मतिता सत्तम भव हित से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे पाइन होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित वाला हो जा। भगवान एक और उपदेश दिया हमें कि सब कर्म संपूर्ण कर्म जो है मेरे को अर्पण कर दे, परंतु चित से हृदय से अंदर से दिखावा नहीं, वो समता फिर प्रति संभाव रखना, इसको लेकर फिर तू मेरा निरंतर मुझ में चित वाला हो जा, निरंतर कंटिन्यूसली मेरे में भगवान में अपने चित को लगा दे। अच्छा व्याख्या क्या है, साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। बहुत क्लियर है कि हमें क्या करना है, संसार से तो संबंध छोड़ना है, ऐसा संबंध नहीं कि कहीं भाग गए, किसी को गाड़ी दे दी घर से भाग गए, है ना, काम नहीं होता हमारे से, ये है वो, नहीं संसार के संबंध सब कुछ करते हो मन से, नॉन अटैचमेंट ऑफ माइंड, मन से उसको आसक्त नहीं होना है भगवान के सब, और दूसरी में क्या करना है भगवान से संबंध अटैच किससे होना है भगवान से। जैसे कि पहले भी एक दिन मैंने कहा था कि पंजाब के एक बहुत बड़े कवि हुए मुल्ले शाह, तो वो किसान थे और अपने खेतों में प्याज लगाते थे इधर से, तो वहाँ एक वो जट गया, बोला मुल्ले शाह की करता पाया, बोले मैं कर पनीर ही लगाता पाया, बोले अच्छा 10 महीनों तो भगवान कितना पाया काम में, भगवान कितना मिलता है, बोले कितना मिलता है मैं रस्ता तेनो इधो पुटना इधो लाना, उसने प्याज का गट्ठा पुटिया और दूसरी तरफ लगा दिया मुल्ले शाह ने, तो बहुत बोले ये क्या, बोले यही तो है कि मन को संसार से निकाल करके भगवान में लगाना है। ये हमें यहाँ देखो ये गीता का ज्ञान हम जिन्होंने पढ़े उनको है, बोले शाह ने भी यही गीता पढ़ी थी, सबको इन ग्रंथों से ज्ञान मिलता है, एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से स्वर्ग विच्छेद होकर स्वतः समता आ ही जाती है। वो कहते हैं भगवान की ऐसी बात नहीं है, जब हम संसार को छोड़ेंगे संबंध छोड़ेंगे भागेंगे नहीं, अंदर से नॉन अटैचमेंट ऑफ माइंड जो मैं बार बार कहती हूँ अनासक्ति, तो क्या होगा, तो हमें कोई भी अलग सा नहीं दिखेगा, तो समता मतलब क्वालिटी, हम सब आपस में एक जैसे ही लगेंगे, हम सब बराबर लगेंगे। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अहंता भगवान में हो जाएगी। देखो मैं भगवान का हूँ, ये हम जब सोचते रहेंगे मैं भगवान का हूँ, ये चिंतन होगा तो अहंता क्या, जो हमारा अहंकार जो है वो भगवान में, तो मैं भगवान का हूँ, और जब ये हमारा अहंकार ईगो भगवान से जुड़ जाता है तो हमारा स्वाभाविक ही भगवान में लग जाते हैं, हमारा चित भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। ये नहीं है कि यहाँ करके हमने संबंध जोड़ा, स्वतः ही है। कैसे स्वतः है? मम्मी मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है, सनातन अंश है। तो इसका मतलब हम भगवान के हैं, भगवान से आए हैं, तो हम उनके स्वतः सिद्ध, हमेशा ही हमारा उनके साथ एक संबंध है। भूल क्यों गए हम? बड़ी एक विडम्बना है कि हमने ये तो भुला दिया कि हम भगवान के हैं, है ना। हम सोचते हम संसार के हैं, हम माता पिता के हैं, पत्नी पति की है, पति पत्नी का है, बच्चे माँ बाप के हैं, वही संबंध जुड़ा रहता है। और भगवान को हम भुला देते हैं, और भगवान को भुलाने से ही हम भगवान से अलग थलग पड़ जाते हैं। आज मैं गीता के इतने श्लोक पढ़ करके अब आपको कल 58 श्लोक है से सुनाऊंगी। अब मैं सिंधु में बिंदु की ओर, इसमें आज हमें एक सब्जेक्ट मिला है जो अभी अभी हमने भगवत गीता में ही पढ़ा, एक श्लोक में कहीं कहीं रेफरेंस में पढ़ा, तो वो है आसक्ति और अनासक्ति, अटैचमेंट एंड नॉन अटैचमेंट। आसक्ति क्या है, अनासक्ति क्या है? मानव जीवन में मृत्यु का अपना विशेष स्थान है, जो आया है वो जाएगा, वस्तु के शब्दों में जो जाएगा वो आएगा, है ना, अपना विशेष स्थान है, जो आया उसको जाना है, इसलिए मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु अवश्यंभावी है। कर्म विपाक के अनुसार, कर्म विपाक मतलब कर्मों का लेखा जोखा, इसने क्या किया के अनुसार मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध से मिले भोगों को भोगता और स्वतंत्र रूप से कर्म करता है। कर्म विपाक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, विधान है, ये जैसे मनुष्य पिछले जन्म में कर्म करके आता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और फिर वो तो पिछले जन्म का भोग रहे हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के भी कर्म करता है स्वतंत्र रूप से, वो कर्म जो है उसका फल हमें अगले जन्म में है। लेकिन जब उसे जो श्वास भगवान की तरफ से मिले हैं समाप्त हो जाते हैं, तभी मृत्यु आती है। ये जो है अभी कर्म विपाक के अंतर्गत है, कौन मनुष्य कितने वर्ष की आयु में कितने श्वास लेकर कितने ग्रास खा करके उसकी मृत्यु किस जगह पर होगी, ये निश्चित है, लिख दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के पास बिली माता बैठती है, वो लिखती रहती है ना। और चित्रगुप्त जो है वो हमारे चित्र लेते हैं, तो क्या फिर बता देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा इसने ये किया। शास्त्र कहता है ये श्वास हमें भगवान ने भी विधि के विधान अनुसार कर्म के विपाक के अनुसार ही दिए होते हैं। हमारे सामने अब विकल्प रह जाता है, अब क्या रह गया हमारे पास, जब हम भगवान ने हमें जीने का पूरा प्रावधान कर दिया है कि जन्म होगा जिस घर में होगा इतने बजे होगा, फिर इतने बजे इतने मिनट पर इस स्थान पर उस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ये तो भगवान ने लिख दिया ब्रह्मा जी ने, तो क्या है मनुष्य के हाथ में। लेकिन फिर हमारे हाथ में है कि हम उन श्वासों का प्रयोग कैसे करें जो उसमें हमें मिला है, उसका प्रयोग गालियां दें, लोगों से प्यार करें, अच्छे काम करें, बुरे काम करें, क्या करें, ये संसार की माया में आसक्त होकर या अनासक्त होकर, मतलब संसार ये माया है, न दर्शन है ना, संसार क्या है, माया है, माया एक छलावा है, छलावा मतलब है नहीं लेकिन भासता है। जैसे राजस्थान में रेत जो है इतनी चमकती है कि दूर से लगता है ये जल है, और उस जल को पीने के लिए हिरण इतनी तेजी से दौड़ते हैं, पर नहीं वहाँ जल नहीं मिलता आगे जा करके। ऐसे ही ये संसार जो है चमकता है दूर से, ये कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो चमकते हैं वो सभी सोना नहीं होते हैं। मतलब चमकीली चीज दूर से तो ऐसी लगती है कि बहुत अच्छी है, फिर हम उसमें जाते हैं दौड़ते हैं उसकी ओर तो हम उसमें फंस जाते हैं। ये संसार एक माया है, एक छलावा है, एक चमकती हुई वस्तु है जिसमें हम आसक्त हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, या फिर अनासक्त होकर भी हम इन श्वासों का प्रयोग कर सकते हैं। असक्ति ही मृत्यु है। मृत्यु क्या है असली में, कि जब हम संसार में फंस जाते हैं, फंसना ही मृत्यु बन जाती है। और अनासक्ति, जब हम संसार से अटैच न रह करके संसार में जीते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं संसार के काम करते हैं, विवाह संबंध होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारा मन उनमें नहीं रहता, मन कहाँ रहता है, भगवान में। आसक्ति हमें चिंता की ओर ले जाती है, आसक्ति हो गई किसी से तो लगी चिंता, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, जबकि अनासक्ति व्यक्ति को चिंता मुक्त करती है। अब प्रश्न है कि आसक्ति है क्या, आसक्ति का शाब्दिक अर्थ है आसाकाति, जो हमारे पास शीघ्रता से आ सकती है, यही आसक्ति है। इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किंतु आ जाने पर और के लिए पूरा जीवन परिश्रम करना पड़ता है। आसक्ति का अर्थ हुआ विश्व में जीवन की रुचि, जिसकी ओर हमारा मन बड़ी तेजी से दौड़ता है, वो आसक्ति है। आसक्ति का एक अर्थ है कि विषय वासनाएं जो संसार के, उसमें हम जब इंटरेस्ट लेते हैं वो आसक्ति है। अनासक्ति का अर्थ हुआ संसार के विषय में अरुचि और भ्रम में रुचि। अनासक्ति का अर्थ क्या हुआ कि संसार के विषय में रहना तो संसार में, पर उनमें अपने मन को नहीं फंसाना। मन को कहाँ लगाना, भ्रम में, भगवान में, जो जीवन में सहज नहीं आ पाती, लेकिन ये अनासक्ति जो है उसको बोले हाँ बोल दिया मैंने, हो गया, नहीं इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। इसके लिए तप त्याग संयम साधना की आवश्यकता है। ये लोग कहते मैं तो अनासक्त हूँ, मुझे घर घाट से क्या लेना, बस, लेकिन होता नहीं वास्तव में ऐसा। जो लोग तपी होते हैं, त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, साधना करते हैं, वो अनासक्त होते हैं। आसक्ति होने से जीवन का सदुपयोग नहीं हो पाता, मन भगवत प्राप्ति की ओर नहीं लगता। मानव जीवन भगवान की ओर से दी गई एक अनुपम देन है, इसलिए जीवन भगवत बुद्धि रखकर ही जीना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए मानव आसक्ति से अनासक्ति की ओर नहीं बढ़ता और अनासक्त नहीं हो पाता। मतलब और सब चीज के लिए वो आसक्ति करता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान में वो आसक्त नहीं होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, इस लोक में किए गए अच्छे बुरे कर्म वासनाएं उसी प्रकार से आ सकता है जैसे अग्नि में धुआं, लेकिन जो हमने अच्छे काम किए या बुरे, जैसे अग्नि के साथ धुआं भसा रहता है जहाँ अग्नि वहाँ धुआं होगा, ऐसे ही अच्छे बुरे संस्कार जो हम लेकर आए हैं वो हमारे अंतःकरण में है। शरीर तो नया मिल जाता है, पर माँ बाप सभी विधि के अनुसार मिलते हैं। पुनः मानव संसार में माया में सप्त हो जाता है मानव, बंधन के मरकट की नाई। तो संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदे किस प्रकार चने के लोभ में सदा सदा के लिए भेलिए के हाथ में बंध जाता है। भेलिया एक तंग मुंह में बर्तन में चने बांध लेता है तो हाथ निकालना मुश्किल हो जाता है, और उसका बंदर का भ्रमित मानस सोचता है कि बर्तन ने उसे पकड़ कर रखा है, और वह भूल जाता है कि वह स्वयं ही तो फंसा है। थोड़ा प्रयत्न करने पर भी वह भाग सकता है, लेकिन वह तो चनों की मुट्ठी बांधे रखता है। ईमानदारी आता है तो उसे पकड़ कर ले जाता है। तुलसीदास जी ने ये इस दोहे में ये दृष्टान्त दिया हमारे लिए कि जिन्होंने बंदे को पकड़ना कह देते उसमें डाल देते हैं कहने मुंह वाले बर्तन में और वो जाता है तो जब वो फंस जाता है तो नीलिया उसको पकड़ लेता है। तुलसीदास जी ने दूसरा उदाहरण तोते का दिया है कि तोते तोते फल के लालच में बंदे लटके फले के फलों की रस्सी पर बैठकर आनंद पूर्वक खाने लगते हैं। यहाँ तोतों का दिया है कि एक रस्सी लगा दी है फल पके हुए उसके साथ बांध दी के साथ तोते खुशी खुशी आते हैं और फले पके हुए फलों को रस्सी पर बैठकर आनंद पूर्वक खाते हैं। वो सामने भेड़िए को भी देख रहे हैं शिकारी को देख रहे हैं और मुंह में रखे फल के साथ चुम चुम भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेहली आया एक दूसरे को बोल रहे हैं वो चौं चौं करके और मुंह में वो मीठे मीठे फल रखे उनका स्वाद भी ले रहे हैं पर उनका आसक्त मन फल को छोड़कर उड़ना नहीं चाहते। वो चाहते तो उड़ जाते क्यों बैठे रहना था माँ उड़ जाना था लेकिन क्या है मन में आसक्ति है फल की। पक्षी तो उड़ सकता है पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख भी हैं पर फिर भी वह भेड़िया का बंधन स्वीकार करके पिंजरे में पड़कर रटा रटाया ही बोलता रहता है। तोते का उदाहरण यह है जब उसको भेड़िया ले जाता है पकड़ करके तो पिंजरे में डाल देता है फिर जो उसमें रटा सब चारे नहीं बोलता है बोल राम बोल जो कुछ उसको बुलाया होता है समझाया होता है भले उसकी आत्मा सुदूर के उड़ान के तरसती रहती है कहते हैं कि वो बेचारा तरसता है कि मैंने भी उड़ना था मेरे पास पंख थे पर क्या बंधन में फंस गया है। आसक्ति ही बंधन है अनासक्त मानव के लिए कोई बंधन नहीं होता है जब माया के बंधन को काट कर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का ये शरीर जो है ना ये भी एक पिंजरा है जैसे तोते को पिंजरे में बांध दिया जाता है ना अंदर कर देते हैं कि वो लगा देते हैं द्वार ऐसे हमारी आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में बंद हो गई है। क्यों हुई है क्योंकि हम संसार में आसक्त है संसार में आसक्त होने से हमारी आत्मा एक शरीर रूपी पिंजरे में बंद गई है। कई दफा ये आसक्ति इतनी होती है कि पिंजरे का दरवाजा भी भगवान किसी के द्वारा खुलवा देते हैं बोलते चल आ जा वो उदास आ जा लेकिन फिर हमें क्या होता है मनुष्य को कि वो उस पिंजरे से आसक्त हो जाता है सोचता है मैं पिंजरे को कैसे छोड़ू उड़ान भरूं कि पिंजरा छोड़ू दोनों में किसको पकड़ू जिसके साथ ज्यादा आसक्ति होती है वो उसी को फंसा रहता है। अब पिंजरे में बैठा वो पंछी अगर उड़ेगा नहीं तो क्या होगा वो पिंजरे में फिर से बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारी आत्मा जो है संसार में आकर के माया के कारण इस शरीर में बंधन में आ गई है। अब हम भक्ति से ज्ञान से तप से प्यार से समता से बहुत साधन बताए ग्रंथों ने उनसे हम उस बंधन को खोल सकते हैं माया के बंधन असली में माया का बंधन है ही नहीं जब हम मान लेते हैं तो बंधन होता है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी जैसे ये याद वैसे एक और याद आ गई मुझे भले इस किताब में नहीं लिखी गई है कि कोई व्यापारी था जिसके पास बहुत से घोड़े थे वो रात को कहीं ठहरा घोड़ों को लेकर तो व्यापारी के लोगों ने आकर बताया कि एक रस्सी कम हो गई है घोड़े थे कि ऊंट थे झूठा मतलब जानवर थे तो क्या करूं स्वामी अब क्या करूं सब को तो बांध दिया सब बैठ गए लेकिन एक ऊंट खड़े का खड़ा ही है वो उसको जब तक हम बांधूंगा नहीं तब तक वो बैठेगा नहीं रस्सी है नहीं अब क्या करें। मालिक ने कहा ऐसा करो जा करके उसके गले के पास खड़े हो जाओ और जैसे रोज रस्सी बांधते थे ऐसे ही ऐसे करो गोल गोल अपना हाथ हिलाओ फिर रस्सी की तरह उसको बांधो कल्पना में फिर गठ मार दो हिला दो उसने जाके वैसे ही ऊंट के गले को वो रस्सी बांध दी कल्पना की रस्सी और ऊंट चुपचाप बैठ गया उसको लगा मैं बंध गया बैठ गया। सुबह गया उसने सब घोड़ों की सब ऊंटों की रस्सियां खोल दी सब चल पड़े वो ऊंट उठे ही नहीं जबकि उसके गले में बंधन है भी नहीं तक वो उठे ही नहीं। और तब उसने सोचा, जो उनका मालिक मालिक जो उनका सेवक था, उसने सोचा क्या करें हम, ये ऊंट तो उठता ही नहीं, चलता ही नहीं है, सब चले गए। तब मालिक के पास फिर गया, कहता कि वो ऊंट तो उठता ही नहीं। अब बोला जैसे रस्सी बांधी थी बैस के उसको खोलो तब वह ऊंट चलेगा। तो फिर उसने वैसे ही किया, खोलने का वो कल्पना की, नाटक किया, तो ऊंट खड़ा हो गया। ठीक ऐसे हम लोग भी शरीर रूपी पिंजरे में या रस्सी से बंध गए हैं, अब हमें इससे निकलना है, निकल करके भगवान की प्राप्ति करनी है और अपने जीवन का कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी गीता माँ।